आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार, मेरा नाम बिंदिया है और हम न्यायपालिका पर चर्चा कर रहे थे। ये आपका अध्याय 6 है और हमने न्यायपालिका को जाना कि ये किस तरीके से भारत में काम करती है। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के संग मिलकर सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग बनाती है। भारत में न्यायपालिका को किस तरीके से एक पिरामिड के शेप में बांटा है हमने वो भी देखा। सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद जिला अदालतें और फिर अधीनस्थ अदालतें। हमने न्यायालयों के, खासकर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को भी समझा कि किस तरीके से जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसके अलग अलग क्षेत्राधिकार हैं, उसका मौलिक अधिकार है, वो राष्ट्रपति को सलाह भी देता है और सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार भी है, उसके पास रिट संबंधी क्षेत्राधिकार है और अपीली क्षेत्राधिकार भी न्यायालयों के पास है। अब हम आज आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम एक नई प्रथा जिसकी शुरुआत हुई है हमारे जस्टिस सिस्टम में, उसको पढ़ेंगे। वो है न्यायिक सक्रियता। इस न्यायिक सक्रियता को हम समझेंगे कि ये जो इनोवेटिव ढंग है एक न्याय को लाने का देश में, उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लें और पृष्ठ क्रमांक 134 पेज नंबर 134 पर आ जाएं। नीचे के पैराग्राफ से हम शुरू करेंगे जहां है न्यायिक सक्रियता। आपने कई बार जनहित याचिका के बारे में सुना होगा। कई बार कोर्ट में आप सुनते हैं, समाचारों में देखते हैं कि सरकार के कुछ अंगों में कुछ आपस में कोई बहस हुई या कोई एक नॉर्मल व्यक्ति है, कोई एक आम व्यक्ति है या आम समूह है या कोई एनजीओ है, उन्होंने जनहित याचिका दायर की। कि हमेशा आप न्यूज देखेंगे, हर 2-4 दिन में आपको ये शब्द जनहित याचिका सुनने को मिलता है। जो जनहित याचिका शब्द है वही न्यायिक सक्रियता जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसको एक महत्वपूर्ण कार्य बनाने में जनहित याचिका का बहुत बड़ा कार्य है। और इन दोनों शब्दों, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका, ने न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं जो उससे पहले थे ही नहीं। और इनको लोकतंत्र की प्रथा को मजबूत बनाने में इन दोनों शब्दों, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका का बहुत बड़ा योगदान है। जो जनहित याचिका है उसको हम लोग कभी को सामाजिक व्यवहार याचिका भी कहते हैं, सोशल एक्शन लिटिगेशन, या आजकल जो टर्म उसको यूज कहते हैं उसको PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या सामाजिक व्यवहार याचिका से हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जो पूरे समाज को लेकर कोई विषय है, उससे रिलेटेड कोई विषय, किसी एक व्यक्ति से रिलेटेड ना होकर कोई ऐसा मैटर जो बहुत लोगों को अफेक्ट करता हो, बहुत लोगों के जीवन पे प्रभाव डालता हो, उसी का कुछ लेना देना है इस लिटिगेशन से। तो अब समझते हैं कि ये लिटिगेशन या जो जनहित याचिका है वो क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, जो नॉर्मल कानून होता है, अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या है तो सीधे अदालत में जाता है और उसका, खासकर जब उसका व्यक्तिगत कुछ नुकसान हुआ है, कोई चोरी का मामला है, कोई भूमि संबंधी मामला है, जो भी है, उसमें एक व्यक्ति इन्वॉल्व होता है, उसके पास पूरी प्रोसीजर है, वो कोर्ट में जाएगा, अपील करेगा कि कानून के तहत ये सब कुछ दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जब भी उसके लगेगा कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या कोई विवाद है तो व्यक्ति इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है, इतना हम जानते हैं। लेकिन ये जो सोच है इसमें 1979 में अचानक से एक बदलाव आया। ये बदलाव क्या आया कि न्यायालय में एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई का निर्णय लिया जिसमें जो पीड़ित था, जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम थी, उसने नहीं बल्कि किसी और ने उस मुकदमे को दाखिल किया। जो व्यक्ति के संग वो जो केस था, उसमें जो पीड़ित था, जो जिस व्यक्ति को परेशानी थी, वो व्यक्ति न्यायालय नहीं गया, परंतु उसके बदले किसी और व्यक्ति या समूह ने कोर्ट में याचिका दायर की। क्योंकि ये जो मामला था, ये जनहित का मुद्दा था, ये कई लोगों से जुड़ा मुद्दा था, इसीलिए इसको कहा गया जनहित याचिका। मतलब जो पीड़ित है, जरूरी नहीं है कि वही अदालत जाकर कहे कि मेरे संग इस तरीके का बर्ताव हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है। हो सकता है वो व्यक्ति कमजोर वर्ग का हो, गरीब हो, उसमें इतनी हिम्मत ना हो, साहस ना हो कि वो अदालत तक जाए। तो उसकी जब कोई पीड़ा देखकर कोई समाज या कोई सामूहिक ग्रुप या कोई इंडिविजुअल भी अगर सोचे कि नहीं, ये व्यक्ति पीड़ा में है, मुझे इसे बाहर निकाला है, इस और ये व्यक्ति ने इसके संग कई अन्य लोग हैं जिनके संग ये समस्या है, तो ये जब समस्या लेके कोई एक ग्रुप या व्यक्ति किसी और की समस्या लेकर कोर्ट में जाता है, तो उसी को कहते हैं, जब वो मुकदमा बनता है तो उसे कहते हैं जनहित याचिका के द्वारा ये मुकदमा दायर किया गया है। तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो जो सर्वोच्च न्यायालय में इस जनहित याचिका की वो हुई, उसमें क्या हुआ था कि जो कैदी होते हैं, जो जेल में रहते हैं, उनके अधिकारों से संबंधित मुकदमा था, क्योंकि उनके संग कैदी है, उन्होंने जुर्म किया है, लेकिन उनको भी मानवीय जीवन जीने का तो अधिकार है, तो उन्हें वो जीवन की रक्षा, उनको अधिकार नहीं मिल रहा था। तो एक सोशल ग्रुप ने डिसाइड किया कि इनके अधिकारों के लिए, क्योंकि ये तो जेल में है, ये अपने लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, इनको भी कम से कम एक अच्छे स्तर का जीवन जीने का अधिकार है, और अच्छी भावनाओं के संग जेल में रहे, वो लोग हैं जेल में, परंतु उनको भी एक जो एक आम मानव को जीने का जो अधिकार है वो उन्हें प्राप्त होने चाहिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने कोर्ट में जाकर इस पर एक याचिका दायर की। अब जब ये मामला हुआ 1979 में, उसके बाद ये जो जन सेवा की भावना रखने वाले लोग थे, जो एनजीओ थे, उनको अब लगा कि एक मुकदमों की बाढ़ आ गई। ये सारे संगठन, ये जितने सोशल एक्टिविस्ट थे, इन्होंने गरीबों के लिए, अच्छे जीवन के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, दूसरे लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए, जो भी ये तो इस तरीके मुद्दे हैं, उस पर उन्होंने न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के पास हम सीधे जाएंगे और मांग करेंगे कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें। और ये जो जनहित याचिका, यही न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन बन गई। अब ये साधन कैसे बनी? क्योंकि देखिए, किसी के द्वारा मुकदमा करने पर, उस मुद्दे पर विचार करने के बजाय, अब जब न्यायपालिका को पहले तो कुछ मुद्दे मिले, लोग आते थे उनके पास, तब तक तो वो उन पर विचार करते थे और ये न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई। अब धीरे धीरे न्यायपालिका ने, जो भी जजेस थे, जो भी लोग थे, उन्होंने जो अखबारों में भी खबरें छपती हैं, और उन्हें डाक से भी शिकायत प्राप्त होने लगी कि इस तरीके का कुछ गलत कार्य हो रहा है या हम पर इस तरीके का दुर्भावना रखी जा रही है, तो न्यायपालिका ने सीधा उन खबरों के आधार पर उन पर विचार करना शुरू कर दिया। तो ये हो गई न्यायपालिका की न्यायिक सक्रियता, सक्रिय हो गई, एक्टिव हो गई अचानक से हमारी न्यायपालिका। मतलब एक व्यक्ति जाए उनके पास, केस लड़े, 10 साल केस चलता रहे, वो तो चल ही रहा था, पर अब न्यायपालिका को लगा कि अब हमें भी एक सोशल एक्टिविज्म का काम करना पड़ेगा। वो जब देखते थे कि किसी पर कोई अत्याचार हुआ है, अगर अखबार से उन्हें पता चलता था या कोई सूचना मिलती थी, तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको वहां पर एक जो भी उसके लिए कार्य करना है, उसका जो रिजल्ट होना है, वो तय करती थी न्यायपालिका। और यही है न्यायिक सक्रियता, न्यायालय का सक्रिय हो जाना। तो जो ये जनहित याचिका है, इनके माध्यम से जो न्यायालय है, उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ा दिया। कई मैटर्स उन्होंने हाथ में लिए, जैसे एक पर्यावरण का ही ले लीजिए कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक शुद्ध हवा पानी तो होना चाहिए, तो न्यायालय ने इस पर भी अपने विचार प्रकट किए। उसने सरकार को कहा कि आप कोई पॉल्यूशन संबंधी कोई रूल लाइए। सरकार नहीं गई, कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं गया, लेकिन इन याचिकाओं से न्यायालय को भी अपना अधिकारों का दायरा बढ़ाने का एक अवसर मिला। और ये जो न्यायालय है, उनका मानना था कि समाज के सदस्य के रूप में अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्तियों को इंसाफ की गुहार लगाने का अधिकार है। हम सब सामाजिक प्राणी हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ हम व्यक्ति के रूप में ही जीते रहें। अगर किसी के संग कोई अत्याचार हो रहा है, कोई गलत चीज हो रही है, तो हम भी उसका मुद्दा उठा सकते हैं। तो ऐसे देश में कई प्रारंभिक जो जनहित याचिका आई, वो खासकर कैदियों के बारे में थी। और तिहाड़ जेल में खासकर 1980 की बात है, जब एक बंदी ने, एक कैदी था, उसने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को पत्र भेजा। उसने बताया कि हमें किस तरीके की शारीरिक यातना दी जाती है, हम पे फिजिकल टॉर्चर होता है। और आप मानेंगे, न्यायाधीश ने उसे सीधे याचिका मान लिया। मतलब ये नहीं कहा कि आप जाइए पुलिस में लिखिए, रिपोर्ट कीजिए, नहीं। उन्होंने सिर्फ एक कुछ लेटर आप लिख दो कोर्ट को कि हमारे संग ऐसा हो रहा है, अगर कोर्ट को लगता है गलत है तो वो उसी समय उस पर सुनवाई करते हैं। यही जनहित याचिका है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर थी कि पहले व्यक्ति छोटी कोर्ट में जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पुलिस के पास जाएगा, छानबीन होगी, वो नहीं। अगर कोई अर्जेंट मैटर है जिससे किसी का जीवन प्रभावित हो रहा है, उसी को जनहित याचिका कहते हैं। और ये जो अधिकार क्षेत्र है कोर्ट का, जहां पर से लिखा नहीं गया कि आपको एक काम करना है, पर वो अपने को एक सामाजिक प्राणी मिलकर जब काम करने लगी कोर्ट, तो वो होता है उसका न्यायिक सक्रियता। तो ये 1980 के बाद, अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर न्यायपालिका में एक बदलाव आया, और उन्होंने उन मामलों में भी रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत में नहीं आ सकते थे। तो गरीब लोगों की भी जो याचिकाएं हैं, जरूरतमंदों की भी याचिकाएं, कोर्ट ने कहा आप उनकी याचिका दायर कर सकते हैं, हम उस पर सुनाई अवश्य करेंगे। तो ये जो न्यायिक सक्रियता जो शुरू हुई, उससे परंतु हमारा जो समाज तो था, उस पर तो असर पड़ा ही, साथ ही जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था थी, उसमें थोड़ा सा एक दखलंदाजी हो गई, क्योंकि इससे न्याय व्यवस्था को तो लोकतांत्रिक बनाया गया, और जो हमारी कार्यपालिका थी उसको भी अब कोर्ट उसको उत्तरदायी बनाने लगी। वो बाध्य हो गई कार्यपालिका कि अब तो हमें ये कार्य करना ही है। आप समझ रहे हैं अंतर? तो ये हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, काम था कार्यपालिका का, जैसे प्रदूषण का मामला है, तो ये कार्यपालिका और विधायिका का काम है वो नियम बनाए। पर जब उन्होंने नियम नहीं बनाया, वो कोई संगठन कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, न्यायपालिका ने ऑर्डर दिया कार्यपालिका को और विधायिका को कि आप पॉल्यूशन पर नियम बनाइए। तो जो कार्यपालिका है उस पर थोड़ा सा दबाव बढ़ने लगा। जैसे चुनाव प्रणाली, अब कोर्ट ने कोशिश की कि जो व्यक्ति चुनाव लड़े वो अपनी संपत्ति का, आय का, शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में शपथ पत्र दे, जिससे लोगों को सही जानकारी मिले। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ लेता था, उस पर कोई मुकदमा हो, वो उसे कोई राजनीति की समझ ना हो, उसकी संपत्ति वो करप्ट हो, तो अब इस न्यायिक सक्रियता के कारण ही जो न्यायालय ने एक ऑर्डर दिया कार्यपालिका को कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसको अपनी संपत्ति बतानी पड़ेगी, अपनी योग्यता बतानी पड़ेगी, ताकि जो जनता है उसको भी सही जानकारी मिले कि वो किसको चुन रही है। तो ये सब चीजों से एक जो सोसाइटी में पॉजिटिविटी तो आई, परंतु एक जो नकारात्मक तो नहीं कहेंगे, पर एक ये हो गया कि जो हमारी न्यायालय है उन पर काम का बहुत बहुत बढ़ गया, क्योंकि वो अगर वो दिन के 10 केस लेते थे तो अब इतनी याचिकाएं आने लगी, उनका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और दूसरा नकारात्मक पहलू ये उभर कर आया कि इस न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में अंतर धुंधला हो गया। अब न्यायालय उन मैटर्स को भी हल करने लगा जिसको कार्यपालिका को करना था। जैसे मैंने आपको प्रदूषण का उदाहरण दिया, तो इस प्रदूषण को दूर करने के लिए, जैसे भ्रष्टाचार के मामले थे, उसपे भी कार्य जो करना था वो कार्यपालिका को करना था, परंतु उन्होंने उतना किया नहीं, तो जो हमारी न्यायपालिका है, हमारी जुडिशरी है, वो एक्टिव हो गई। तो इसीलिए जो कुछ लोग हैं उनका मानना है कि तो परस्पर संतुलन रहता था इन तीनों अंगों के बीच में, वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। और जो लोकतांत्रिक शासन है उसका तो आधार यही है कि सरकार का एक अंग दूसरे की शक्तियों का सम्मान करे और किसी के एरिया में इंटरफेयर ना करे। तो एक दूर से एक पहलू ये आया कि न्यायिक सक्रियता से ये जो लोकतांत्रिक सिद्धांत था उसको थोड़ा सा आघात पहुंचा है। तो बट जो अगर हम जनता के पर्सपेक्टिव से देखें या एक आम व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से देखें, तो जो न्यायिक सक्रियता है उसने एक आम व्यक्ति को एक पावर दे दी है कि उसकी बात भी चुनी जाएगी और सुनी जाएगी। तो ये थी न्यायिक सक्रियता। अब हम प्रश्न क्रमांक 138 पर आ गए हैं, जहां पर है न्यायपालिका और अधिकार। तो पहले हम देख चुके हैं कि न्यायपालिका को हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। तो इसमें जो संविधान है इसमें वो दो विधियां को बताता है कि जिससे संविधान हमारे अधिकारों की रक्षा कर सकता है। पहला तो रिट है, हमने रिट देखे, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ये सब जारी करके वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है जो हमारे अनुच्छेद 32 में दिया है। और ऐसी रिट दायर उच्च न्यायालय में भी हो सकती है, उच्च न्यायालय में जो शक्ति है वो अनुच्छेद 226 में दी है। तो रिट एक तरीका है जिससे हमारे संविधानों की रक्षा करता है। और दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित करके उसे लागू होने से भी रोक सकता है। कोई कानून है और अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगे कि संविधान के हिसाब से नहीं है तो वो उसे रोक सकता है। और इस तरीके से जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक तो है ही, उसकी नियंत्रण उसका देखता ही है, परंतु साथ में वो संविधान का व्याख्याकार है। तो वही संविधान की व्याख्या करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ये लॉ ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे है, उस व्याख्या को ही संवैधानिक माना जाएगा। तो ये जो सेकंड पॉइंट है कि उस संविधान का व्याख्याकार है, उससे भी एक नई व्यवस्था हमारे देश में आई। उस व्यवस्था को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। तो इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट पावर है वो ये आजकल न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। इसका अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है, और यदि वो संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक भी घोषित कर सकता है। अब अगर न्यायालय को लगता है कि ये रूल था, ये इस तरीके का कानून था, परंतु ये कानून ठीक नहीं है, तो वो इसको गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ये जो पावर है कोर्ट की न्यायिक पुनरावलोकन की, वो कहीं पर भी जो हमारा संविधान है उसमें कहीं नहीं लिखा, ना कोर्ट में लिखा है। हमारा तो लिखित संविधान है पर यहाँ पर कहीं लिखा नहीं गया है। और जो इसमें दर्ज है कि मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है, और इसी से न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का सर्वोच्च न्यायालय ने इस्तेमाल शुरू कर दिया। शब्द नहीं लिखा है कि पुनरावलोकन कर सकता है, बस ये लिखा है कि अगर कोर्ट को लगता है कि कानून अधिकारों के विपरीत है तो वो उसको निरस्त कर सकता है। तो अब हमने देखा कि संघ के जो भी मामले हैं उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय अपना पुनरावलोकन कर सकता है, और वो ऐसा करके किसी भी कानून को संविधान में निहित शक्ति के बंटवारे की योजना के विरुद्ध होने से रोक सकता है। देखिए जैसे संघीय ढांचा है हमारा, तो केंद्र और राज्यों के बीच में तकरार चलती रहती है। तो जैसे केंद्र को एक कानून बनाए और कुछ राज्य हैं उनको लगे कि कानून का विषय राज्य सूची का है, आप नहीं, केंद्र नहीं बना सकता, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और कोर्ट उन राज्यों से अगर सहमत हो तो कोर्ट जो उस सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया है उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इस तरीके के भी कई मामले हमारे सामने आए हैं। तो जो ये रिट जारी करना है, न्यायिक पुनरावलोकन है, ये जो सारी शक्तियां हैं ये अब धीरे धीरे इसने सर्वोच्च न्यायालय को अत्यंत ही शक्तिशाली बना दिया है। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का मतलब यह हुआ कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधानों की, जो भी संविधान में लिखा है, उसकी व्याख्या कर सकती है। क्योंकि अनेक लोगों का मानना है कि इसके द्वारा न्यायपालिका प्रभावी ढंग से संविधान की रक्षा करती है और नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की कार्यपालिका को शक्ति दी है। तो ये जो मैटर्स थे, इनको अब हम समझ गए हैं कि न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, पुनरावलोकन, ये सब हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा गया था कि एक एक चीज लिखी गई हो, नहीं। परंतु धीरे धीरे समय के संग जनता की क्या जरूरतें हैं, देश की क्या जरूरतें हैं, उसके साथ ये हमारे देश में चेंज आया है। तो चाहे शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात हो, बंधुआ मजदूरी की बात हो, लोगों की खरीद फरोख्त जैसे गलत काम भी होते हैं, बाल श्रम, ये जितने भी कार्य हैं, जो गलत कार्य हैं, इसमें लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो जिन सब पर जो रोक लगी है वो जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता के कारण ही लगी है। और न्यायालय ने अनेक मुद्दों पर विचार किया कि जो खदान में लोग काम करते हैं उनकी कैसी व्यवस्था है, बच्चों का यौन शोषण होता है, कई जगह कैदी जो होते हैं उनकी आंख फोड़ दी जाती है। तो इन सब चीजों को इनके अधिकारों की बात कर जो हमारा न्यायपालिका है उसने लोगों के अधिकारों को अर्थपूर्ण बना दिया है। अब हम इतना समझ गए, आगे चलेंगे और बात करेंगे न्यायपालिका और संसद की। तो अब देख लिया है हमने कि जो न्यायपालिका है उसने अधिकार के मुद्दे पर तो बहुत सक्रियता दिखाई है और राजनीतिक व्यवहार और बर्ताव से संविधान को जो लोग ऐसे ठेंगा दिखा देते थे कि हम सब पावर हैं, उनको भी न्यायालय ने सुधारा है। तो जो चीजें पहले न्यायालय के दायरे में नहीं थी उनको भी अब न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में कोर्ट लेकर आई, जैसे खासकर राष्ट्रपति और राज्यपाल, उनकी शक्तियां। तो पहले आप इनको कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते थे इन मैटर्स को, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को भी बहुत निर्देश दिए हैं। जैसे हमारे देश में खासकर करप्शन के मामले हुए, हवाला मामला हुआ, हवाला कांड हुआ था, एक बार जब नरसिम्हा राव की सरकार थी उससे पहले वहां पर पेट्रोल पंपों का अवैध आवंटन कर दिया गया था, तो किसी को भी वो जो नहीं जरूरत है उनको भी, जो लोग उसमें शामिल थे घोटाले में, उन्होंने पेट्रोल पंप ले लिए। तो ऐसे अनेक मामलों में सीबीआई को निर्देश दिया कि वो भ्रष्ट राजनेता हैं, जो नौकरशाह हैं भ्रष्ट, उनके विरुद्ध जांच करे। तो आपने कई नाम सुने होंगे, हवाला का तो अभी भी नाम आता है, ये सब न्यायिक जो हमारी सक्रियता है उसके परिणाम से है। तो जो भारतीय संविधान शक्ति के जो सीमित बंटवारे अवरोध संतुलन का एक जो उदाहरण था, एक सिद्धांत था, उसमें यही था कि सब का कार्य स्पष्ट है। संसद जो हमारी विधायिका है उसका काम है कानून बनाना, कार्यपालिका उसे लागू करेगी और न्यायपालिका विवादों को सुलझाएगी और ये भी सुनिश्चित करेगी कि कौन सा कानून संविधान के अनुकूल है। लेकिन इन स्पष्ट कार्यों के बावजूद भी अब इन लोगों में, तीनों अंगों में थोड़ा सा टकराव होता है और ये ही भारतीय राजनीति की विशेषता है। और हमने देखा कि थोड़ी सी टकराव तो हर घर में भी होता है, आप एक घर में भी रहे अलग अलग सदस्य तो छोटा मोटा टकराव होता है, परंतु अगर ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है तो इसको हमें थोड़ा सा छूट देनी चाहिए। तो आपकी किताब में एक अच्छा उदाहरण दिया है कि किस तरीके से कार्यपालिका और न्यायपालिका में एक सबसे बड़ा टकराव हुआ था, वो था संपत्ति का अधिकार। देखिए, संपत्ति का अधिकार पहले हमने मौलिक अधिकारों में पढ़ा, वो एक हमारा मौलिक अधिकार था। तो संसद ने डिसाइड किया कि संपत्ति रखने का जो अधिकार है उस पर कुछ प्रतिबंध लगाने चाहिए, क्योंकि उसको सुधार करना चाहते थे। अब ये तो मौलिक अधिकार था, तो न्यायालय ने कहा कि जो संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती, तो संसद ने तब संविधान को संशोधित किया और कहा कि हम कर सकते हैं इसको चेंज। तो संसद और न्यायपालिका में संपत्ति के अधिकार को लेकर विवाद हो गया, और जो मुख्य विवाद थे यही था कि जो निजी संपत्ति है उसका क्या अधिकार होगा, मौलिक अधिकार इसमें से कौन सा है, क्या संविधान को संसद चेंज कर सकती है। तो इस तरीके के मामले सामने आने लगे, दोनों के बीच काफी ज्यादा टकराव बढ़ गया, और 1967 से लेकर 1973 तक बहुत ही विवादों में रहा ये नियम। तो उसके बाद ये विवाद धीरे धीरे गहराता गया, और भूमि सुधार कानूनों के अतिरिक्त निवारक नजरबंदी कानून, नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून, ऐसे कई कानून आए जो निजी संपत्ति से भी रिलेटेड थे, उन पर संसद और न्यायपालिका के बीच में विवाद हुआ। तो 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो संसद और न्यायपालिका के संबंधों में एक महत्वपूर्ण निर्णय था, और इस केस को हम केशवानंद भारती नाम के मुकदमे से जानते हैं, मतलब जो व्यक्ति है जो इसमें था वो सरकार के खिलाफ गया वो था केशवानंद भारती। तो इस मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। न्यायालय ने यह भी कहा कि संपत्ति के अधिकार के विवादास्पद मुद्दे के बारे में न्यायालय ने कहा यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, इसीलिए उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, और न्यायालय ने यह निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं वो न्यायालय निर्णय लेगा। तो ये न्यायपालिका का बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है कि जब इस संपत्ति के विवाद पर दोनों के अधिकारों में जब लड़ाई हुई, जब विवाद हुआ, तो न्यायालय ने एक टर्म दी, मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा क्या है। तो आप देखिए जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारी जो प्रस्तावना में दिया है, जब आप भारत की प्रस्तावना पढ़ते हैं, हम भारत के लोग यहाँ जब शुरू होता है तो बेसिक स्ट्रक्चर उसी में ही दिया हुआ है कि इसमें अधिकार होंगे और कौन कौन से अधिकार होंगे, किस तरीका फ्रीडम होगा, ये सब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर में दिया है। तो न्यायालय ने कहा कि मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता, और ये कुछ जो हिस्से मूल ढांचे के नहीं है उस पर संसद चेंज कर सकती है, और मूल ढांचे के अंतर्गत क्या क्या मैटर आते हैं उसका निर्णय सिर्फ न्यायपालिका लेगी। तो जैसा हम पढ़ चुके हैं कि संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, और फिर इसके बाद विधायिका और न्यायपालिका का जो रिलेशन था थोड़ा चेंज हो गया। अभी भी कुछ कभी कभी इनमें विवाद होता रहता है। तो जैसे न्यायपालिका विधायिका की कार्यवाही का और उसमें हस्तक्षेप करके उसको नियंत्रित कर सकती है, न्यायपालिका कोशिश करती है। जो संसदीय व्यवस्था है वहां पे संसद अपना उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो उसको नहीं गंवाना चाहती, और जो कार जो हमारी न्यायपालिका है वो थोड़ा सा उनके जो खासकर हमारे सांसदों के जो विशेषाधिकार हैं उस पर थोड़ा सा उसको प्रभावित करना चाहती है। और जैसे आप जानते हैं कि जैसे सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध स्वयं सदन में के द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये जो मुद्दे हैं कि अगर कोई सांसद गलत है तो किस तरीके से उसको दंडित किया जा सकता है, क्या सिर्फ उसको संसद ही दंडित कर सकती है या कोर्ट में मामला ले जाया जा सकता है, तो ये इनके बीच में कुछ विवादों के मुद्दे हैं। और जो संविधान ये भी व्यवस्था करता है कि वो न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में आचरण मतलब चर्चा नहीं हो सकती, पर कई बार ऐसा होता है कि संसद और राज्य जो है वो न्यायपालिका पर भी उंगली उठाते हैं, तो इनके आपस में थोड़े से विवाद चलते रहते हैं। तो इन दोनों का मुद्दा आपस में थोड़ा सा संवेदनशील है, और लोकतंत्र में एक सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के प्रति थोड़ा सा सम्मान दिखाना चाहिए, और क्योंकि फाइनली ये लोग मिलकर देश के लिए ही काम कर रहे हैं। तो ये हमने समझा कि किस तरीके से न्यायपालिका और संसद में बीच बीच में कुछ मुद्दे और कुछ विवाद उठते रहते हैं, परंतु ये लोकतंत्र के लिए स्वास्थ्यकारी ही है। ऐसा नहीं है कि इससे लोकतंत्र को कोई चोट पहुंचती है, इससे एक जो आम जनता है उसको तो जरूर ही फायदा होता है। तो अब हम निष्कर्ष पर आ गए हैं कि इस अध्याय में आपने अपनी हमने लोकतांत्रिक संरचना में न्यायपालिका की भूमिका का अध्ययन किया। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के बीच उठने वाले विवादों में फिर भी आज न्यायपालिका की साख कैसे बढ़ी और न्यायपालिका से अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं, तो आम आदमी को इस पर बहुत ज्यादा विश्वास हुआ है। तो जो भारतीय न्यायपालिका है उसमें अपनी स्वतंत्रता के लिए भी वो जानी जाती है। अनेक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने संविधान की नई व्याख्याएं दी हैं और जो नागरिकों के अधिकार हैं उसकी रक्षा की है। तो इस अध्याय में हमने देखा कि जो लोकतंत्र वास्तव में विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक संवेदनशील संतुलन पर आधारित है और कोशिश इन दोनों को करनी चाहिए कि ये एक सीमा में रहें और देश के लोकतंत्र के लिए कार्य करते रहें। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। हम थोड़ी सी प्रश्नावली करेंगे। अभ्यास प्रश्नावली का हम पहला प्रश्न ले लेते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में से जो बेमेल हो उसे छांटे। देखिए, इसमें से जो ठीक बात नहीं है आपको उसको अलग करना है, तो मैं पहले चारों पढ़ देती हूँ। क, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाती है। ख, न्यायाधीशों को अमूमन अवकाश प्राप्ति की आयु से पहले नहीं हटाया जाता। ग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता। घ, न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद की दखल नहीं है। तो इसका उत्तर ग होगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता। अगला है, क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है? अपना उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखें। ये एक बड़ा प्रश्न है, तो इसको आप खुद ही, अब आप जब समझ गए हैं तो आप लिख सकते हैं। और हमने पढ़ ही लिया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है। ये यही है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह तो है ही, वो नहीं है इस तरीके से कि उसको सबको आंसर लेना है, पर उसको संविधान के प्रति वो जवाबदेह, वो स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई नहीं है, लेकिन उसको जो संविधान के अनुसार ही न्यायपालिका को कार्य करना है। और न्यायपालिका का उद्देश्य क्या है कि वो संविधान और प्रजातंत्र के जो भी उद्देश्य हैं उनके लिए निर्णय देना और कानून बनाना भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। तो ये थोड़ा सा एक बड़ा प्रश्न है, ये आप खुद कर सकेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं। तो मैं आपको थोड़े से कुछ प्रावधान बता देती हूँ कि जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद की कोई भूमिका नहीं होती, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निश्चित योग्यता और अनुभव होना चाहिए, न्यायपालिका का जो वेतन होता है वो कार्यपालिका पर निर्भर नहीं है, न्यायाधीशों का सेवा काल लंबा और सुरक्षित होता है, ठीक है, उन पर महाभियोग तो लगाया जा सकता है पर वो बड़ी ही कठिन प्रक्रिया है, और न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी होते, उन्होंने जो निर्णय ले लिया उसको मानना पड़ता है। तो ये कुछ प्रश्न थे। और एक आखिरी प्रश्न हम और कर लेते हैं कि जो नीचे दी गई समाचार रिपोर्ट पढ़े और उनमें निम्नलिखित पहलुओं की पहचान करें। देखिए, एक ये फिल इन द ब्लैंक्स तरीके का दिया है, हम इसको देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने रिलायंस से दहानू के किसानों को 300 करोड़ देने को कहा। निजी कॉर्पोरेट ब्यूरो, 24 मार्च 2005, मुंबई। सर्वोच्च न्यायालय रिलायंस ने 300 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देने को कहा। तो ये मामला किस बारे में है? ये मामला मुंबई क्षेत्र में जो चीकू पैदा करने वाले किसानों को मुआवजा देने के बारे में, जहां पर थर्मल प्लांट लग रहा था उसके रिसाव से इनको नुकसान हो रहा था। इस मामले में लाभार्थी कौन है? इसमें वहां के चीकू पैदा करने वाले किसान लाभार्थी हैं। फरियादी कौन है? ये किसान ही वहां के फरियादी हैं। सोच कर बताएं कि कंपनी की तरफ से कौन कौन से तर्क दिए जाएंगे। तो ये जो रिलायंस कंपनी थी उसने न्यायालय में दलील दी कि जो थर्मल पावर प्लांट है उसको रोकने के लिए या उसके क्या क्या नुकसान है उसके लिए एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया जाए और वो बताए कि ये रिसाव जो है वो चीकू पैदा करने वाले किसानों के लिए नुकसानदायक है या नहीं। तो ये हमने कुछ प्रश्न किए हैं, एक हमें इसकी चैप्टर की समझ भी बनाते हैं और हम समझ भी सकते हैं कि हमें किस तरीके से न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक सक्रियता है, वो किस तरीके से आम जीवन को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है और अब हमने तीनों अंगों को अच्छी तरीके से समझ लिया है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और यही तीनों को पढ़कर हमें समझ में आया कि तीनों अंग सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं और जरूरी है कि तीनों आपसी संतुलन के साथ देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में कार्य करें। तो अब हम यही समाप्त करते हैं अपने इस चैप्टर को, फिर अगले चैप्टर में मैं आपसे फिर मिलूंगी। थैंक यू वेरी मच।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।